يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کر دے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحا کرتے تھے. سچ ہے نا, پہلے لوگ جس طریقے پہ تھے وہ کافی زیادہ اسلام کے قریب تھا. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ کرتا ہے, وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے. ہاں, اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے. مگر جو لوگ, اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا, یہ ہے اصل میں پین پوائنٹ. کیوں لوگ اس سیٹ اپ کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, قبول نہیں کر پا رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے, مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور ہو جاؤ. یہ مسئلہ ہے. ریبیلیس کب ہوتا ہے بندہ؟ جب خواہش نفس آتی ہے. اور خواہشات کے نام پہ ہم جب دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ خوشی تو ہوں گے, تبھی تو ایسا ہو رہا ہے. ہر شادی کے بعد میں آتا ہے کہ پھر وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بھاگتے ہو چلتے کود کے جا رہے ہیں, دیکھو شوہر بیوی بھی خوش ہو گئے, ہسبینڈ وائف خوش ہو گئے. لیکن اسلام کے طریقوں کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ریئل خوشی یہاں ملے گی. تو ان آیتوں کو اگر آپ اس طرح سمجھیں کہ پورے میڈیا کا اگر یہ خیال ہے نا کہ تم اللہ کے راستوں سے ہٹ جاؤ اور تم اپنی مرضی کی شادیاں کرو, ماں باپ کو بوجھ سمجھو, تو یہ غلط ہے. یرید اللہ یخفف عنکم, اللہ تعالیٰ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ وخلق الانسان ضعیفا, کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دشمن نہیں ہے, اس کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے کیا برا ہے. آپ دیکھیے, اس کو یوں سمجھیے کہ ماں باپ جو 16-17 سال ایک بچی کو پالتے ہیں, یا چلیں 18-19 سال تک ایک لڑکے کو پالتے ہیں, کتنی پنچھن کرتے ہیں نا رشتہ لیتے دیتے. اور ہمارے انڈو پاک کلچر میں تو سب سے مشکل ایشو اس وقت رشتے کرنا کرانا ہے. ایٹ موسٹ کوشش کرتے ہیں نا کہ اچھا رشتہ ہو. تو آپ سوچیے, اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, کیا وہ ہمارے رشتے بیکار کرائے گا؟ اللہ چاہتا ہے ہمیں مارے پڑے اور ہمیں تکلیفیں ہوں؟ بالکل بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوں گے وہ سب سے خوبصورت ہوں گے. اب اس کے بعد کچھ منی میٹرز اور ساتھ ہی خودکشی. آپ یہ اس جملے کو بھی لکھیں, کیونکہ اسلام کی وہ صورت جو امت وسط کی صورت میں دنیا کو دکھتی ہے, اس میں ایک اور الزام ہے, اور وہ کہ اسلام از اکول ٹو سوسائڈ. سوسائڈ کرنا ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں, وہ آپ کے مسلمان کہہ رہے ہوں گے, اسلام کیا کہتا ہے؟ اس آیت میں آپ کو رد ملے گا کہ خود کو مارنا, کسی دوسرے کو مارنا اس کی اجازت نہیں ہے. کیسے؟ اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ڈونٹ سوسائڈ. تو جو اسلام خود کو قتل کرنے سے روک رہا ہے, کیا وہ دوسروں کی جان لینے کی آپ کو مجھے دعوت دے گا؟ نو, اٹس ناٹ پاسبل. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے جس نے بھی اسلام کے نام سے یہ بات لگائی اس نے یہ آیت نہیں پڑھی. حدیث میں آتا ہے جس نے خودکشی کی تو وہ قیامت تک وہی کام کرتا رہے گا, خود کو ویسے ہی تکلیف دیتا رہے گا جیسے اس نے تکلیف دے کے خود کو مارا. یقین مانو کہ اللہ تم پر مہربان ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں, 3 سیکنڈ تک غور تو کریں اس پہ. یقین مانو کہ اللہ تم پہ مہربان ہے. ان اللہ کان بکم رحیما. کیا آپ کو اللہ کے یہ سارے قانون پڑھنے کے وقت یہ فیلنگز نہیں آ رہی؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ لو اس سو مچ. ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ سے پیار ہے نا, اللہ تعالیٰ کو اس سے بہت زیادہ ہم سے پیار ہے. دعا کیجئے کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا, اس کو ہم ضرور آنکھ میں جھونکیں گے, اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے, تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے, اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. کبائر, بگ سنس, میجر سنس کی آیت ہے یہ, کہ کس طرح سے. اب کبیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں ہر وہ گناہ جسے معمولی سمجھ کے کیا جائے وہ کبیرہ گناہ. بات واضح. جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو چھوٹا گناہ کریں گے, بار بار بڑا ہو جائے گا. بڑا گناہ کریں گے, بار بار کریں گے, کفر ہو جائے گا. تو کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھیے, یہ اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہوگی. پھر فرمایا, جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اللہ ان کے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دیتے ہیں, اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے یعنی جنت. جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو, اور جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے, اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا پتہ چلا کہ کوئی لڑکی یہ نہ کہے کہ میں لڑکا ہوتی. اس کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں, اگر اللہ نے آپ کو عورت بنا دی اس پہ خوش ہو. ویسے بائدہ میں پوچھوں کہ آپ میں سے کس کی خواہش ہے کہ وہ لڑکا ہوتی؟ ये भी एक आज का फेम है, मैंने एक यंग बच्चियों की क्लास में पूछा तो कई बच्चियों ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा भाई, मैंने फिर उनसे एक एक पूछा, एक एक से पूछा क्यों, तो आप कहते हैं कि वो कब चाहती थी लड़का हो, क्यों हो, जब भाई को तो इजाजत मिल जाती है रात को बाहर जाने की, हमें नहीं मिलती, जब भाई तो स्लीप ओवर के लिए जाता है तो हम नहीं जाते, दिस एंड दैट। तो बहरहाल फिर मैं उनको जो कह सकी मैंने उनसे कहा, अल्लाह ने जो बना दिया शुक्र कीजिए, मेरा तो बिल्कुल नहीं दिल करता मैं मर्द होती, जितनी मौजें औरतों की है इतनी तो मर्दों की तो है ही नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हाल पे राजी कर दे। फरमाए अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है, और हमने हर उस तरके के हकदार वारिस कर दिए जो वालदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़े, अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे एहदो पैमान हो तो इनका हिस्सा दो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर निगरान है। इसके बाद खूबसूरत सी आयत है, आयत 34 को हाईलाइट कर लीजिए, इस पारे की आयत तदब्बुर भी ये हो सकती है, क्या अर्रिजालु कवामुना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, मर्द औरतों पर कवाम है इस बिना पर कि अल्लाह ने इनमें से हर एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। यहां तक बात पूरी। सूरत बकरा से निसा तक मर्दों को कई बार उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया, जिसमें अब यहाँ एक आइडियल होम के इंग्रेडिएंट्स बताए जा रहे हैं। इस एक आयत पर अगर आज उम्मते मुस्लिमा काम कर ले, अमल कर ले, तो आप नोट करेंगे कि उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, उनकी जिंदगी में वो खुशी दौड़ेगी जिसका कोई अंदाजा नहीं। दो जिम्मेदारियां हैं मर्द की, शायद की रोशनी में। नंबर एक, मर्द फिजिकली स्ट्रांग होता है, सच है कि नहीं, वजन मर्द ज्यादा उठा सकता है, डरपोक नहीं होता, घर में चूहा आ जाए तो कौन मारता है, छिपकली आ जाए तो कौन मारता है, चोर आ जाए तो कौन मारता है। अब आपके घर के हालात मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लाम कहते हुए कि मर्दों का जिस्म मजबूत है, स्ट्रांग है, मर्द को स्ट्रांग होना चाहिए। अपने बेटों को मुस्तकबिल के शौहर बनाकर पालें, बच्चों से काम करवाया करें। आज एक बहुत अजीब सी चीज आ गई कि बच्चियों और बच्चों दोनों से काम छोड़ दिए, उधर बूढ़े अब्बा जी काम करते रहते हैं, इधर बूढ़ी अम्मा जी काम करती रहती हैं, और बच्चे मेहमानों की तरह घर में रह रहे हैं, इसीलिए फिर आने वाले वक्त की जिम्मेदारियां नहीं उठाते। दूसरी चीज क्या है, कवाम है वो, खर्च करते हैं, बिमान फकु मिनम वाले। ये तो आज भी रियलिटी है कि एक मुसलमान मर्द जो अपनी कमाई का 90% हिस्सा अपने घर पे लगा देता है, मेरा ख्याल कोई भी मर्द बहुत भी अगर कमाएगा ना तो 10% अपनी जात पे लगाता है, करते क्या वो बेचारों ने लेना क्या होता है, चंद पांच छह फटी हुई पेंटे हैं जीन्स, और अगर पाकिस्तानी मर्द है तो 2-3 सफेद शलवार कमीज, और अगर इंडियन है तो पंजाबी कुर्ते। मर्दों की है क्या जिंदगी, मैं अक्सर सोचती हूँ इनकी जिंदगी में चाम क्या है, उनको कुछ नहीं चाहिए, ना उनको ज्वेलरी चाहिए, ना अच्छे कपड़े चाहिए, ना उनको कोई सॉफ्टनर चाहिए, ना स्किन क्रीमें चाहिए। ये अलग बात है कि कुछ के मर्द भी औरतों से ज्यादा बिगड़े, वो मुझे आपके चेहरों से दिख रहा है, लेकिन आप देखिए वाकई सच कहा किसी ने कि है तस्वीरें कायनात में औरत से रंग है, औरत इस दुनिया की खूबसूरती है। मैं इसको ऐसे सोचती हूँ कि औरतों को सब कुछ चाहिए, मर्द को औरत चाहिए, दैट्स इट, सब कुछ तुम लो, क्यों लो, औरतें क्यों ले, ताकि हम मर्दों को अच्छी लगे। एक बीवी अगर एक अच्छी बीवी बनती है, वो पहनती है, ओढ़ती है, घर को साफ रखती है, खाना पकाती है, खुशबूदार रखती है, मर्द के लिए उससे बड़ी नेमत क्या होगी, साथ ही वो दीन भी रखती है, बच्चों की भी हिफाजत करती है। अब इसलिए आगे मेरे और आपके लिए एक लंबी लिस्ट आ रही है, इतनी बातें मर्दों की हुई, अब कहा कि अच्छी बीवी कौन सी है। पहले मैं आपसे पूछा अच्छी बीवी कौन होती है, तो आप में से कुछ कहेंगे, मैं, अपना नाम लिखेंगे, हो सकता है सच है। आइए चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं, ये जो भी चीजें हम पढ़ने लगे हैं इसको हम सब अपने अंदर ढूंढें, और फिर उसके बाद कल पूछा था हस्बैंड से कि मैं कैसी बीवी हूँ, आज पूछ लीजिएगा, आज तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आप कैसी हैं। पहली खूबी, फसालेहात कानितातुन, पहली चीज क्या है, फसालेहातुन कानितातुन हाफिजातुन, नेक बीवी की अलामतें, वो सालेह औरतें हैं, नेक होती है, उसके दिल दिमाग पे कोई और नहीं होता। देखिए औरत को वैसे ही पाक रखना है खुद को, शादी के बाद कोई दूसरा उनके ख्यालात में भी ना आए, कोई माजी में ताल्लुक था खत्म कर दिया, दैट्स इट, कभी ना करें। और कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द को सोचे। सालेहा नेक, पांच वक्त की नमाजी, हदीस में आता है कि जो औरत पांच वक्त की नमाज पढ़े, रोजे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, और इसी तरह की चंद और खूबियां, तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से गुजरे। मेरी और आपकी जन्नत तो इतनी आसान है, हमारी जन्नत तो अल्लाह ने हमारे घर में रखी हुई है। मर्दों बेचारों को तो क्या कुछ कर करा के ये सब कुछ मिल जाता है, तो लिहाजा इन सारी चीजों पे इंसान अपने आप को अल्लाह के आगे शुक्रगुजार समझते हुए अल्लाह का काम कर दे। फिर दूसरी को भी देखिए, कानिता, तो मुझे और आपको कानिता बनना है। कानिता क्या होती है? देखिए, कनूत में दो चीजें होती हैं, दवाम और आजजी, हमेशा हो, एवरलास्टिसिटी हो और हम्बल हो। ये नहीं कि चाय का कप दिया ऐसे फेंका कि उसमें आधी चाय एक प्लेट में गिर गई, ये लंबी है चाय, आपकी चाय नहीं खत्म होती। काम करे तो मोहब्बत से करे और हमेशा करे, ये नहीं कि जब बाजार जाना है उसी के आप चाय पियेंगे, अभी बना के लाती हूँ। कुछ हस्बैंड भी अब इतने होशियार हो गए हैं, वो कहते हैं जिस दिन बेगम भाग भाग के काम कर रही होती है, हमें समझ आता है आज इसने कहीं जाना है, आज इसने कोई इजाजत लेनी है। लेकिन औरत के मिजाज में कनूत, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, जो भी है खुशी का जरिया बने। देखिए, जब अल्लाह ने आपके लिए इतनी खुशियां रखी हैं और आपके मर्दों को अल्लाह ताला ने थोड़ी सी चीजों से बहलाया, तो आप और मैं अगर अपने मर्द को खुश नहीं करेंगे, और याद रखिए कि इसमें सबसे बड़ी बात जो कनूत में, और भी उनकी खिदमतें हैं, लेकिन एक खास हक के जौजियत, उसकी अदायगी एक तरफ इशारा है। हदीस में आता है कि जो बीवी अपने मर्द की ख्वाहिश को बुरा नहीं करती और मर्द इसी तरह गुस्से में सोता है, तो वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगी या उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अब आप इस पे, औरतें बहुत परेशान होती हैं, ये क्या मुसीबत है, कैसे मुसीबत है? आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने शादी को एक मकसद के साथ रखा। एक मर्द है, शादी से पहले उसको क्या नहीं मिलता? कपड़े उसकी माँ धो देती है, स्त्री बहनें कर देती हैं, खाना नानी बना देती होगी, हर चीज होती है। ये तो अल्लाह का एहसान है कि एक औरत को उसके पास बीवी बनाकर भेजा ताकि वो उसकी ख्वाहिश पूरी करे। अब एक मर्द की बीवी का अगर मिजाज बिगड़ा हुआ है, हर वक्त ही ये हालात है, कभी कुछ कभी कुछ, तो उसकी शादी तो नाकाम हो गई। क्या वो गुनाह की तरफ जाए? वो कहां से जाए? मेरा ख्याल है कि औरतों के लिए तो एक बहुत खुशी का मुकाम है कि मेरे सिवा ये काम आपके लिए और कोई नहीं कर सकता, तो इसको आदमी खुशी बनाए। ठीक है, औरतों में इसकी कम हो सकती है ख्वाहिश, तो इबादत समझें। रात के इबादत मुश्किल है कि नहीं? रोजा आप रखा हुआ आसान है कि मुश्किल है? हज करते हैं तो मुश्किल है, तो क्या इससे भी कोई मुश्किल बात है अपने शौहर को खुश करना? लिहाजा बहुत सारे मर्द जब गलत चीजों में जाते हैं, वजह कोई और हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी बीवी का मिजाज ठीक नहीं है। और इससे रेलिवेंट फिर हर चीज एक अच्छी बीवी में होनी चाहिए। ये मौजूद भी हमारा फेवरेट टॉपिक है, इस पर बहुत कुछ बोला हुआ है, 60 टिप्स हैं, एक अब यूट्यूब पे भी है गलेबन 60 टिप्स टू बी अ सक्सेसफुल वाइफ, और इस पर भी मेरा घर मेरी जन्नत, होम स्वीट होम, इस तरह के बेशुमार लेक्चर वेबसाइट पे मौजूद हैं, पूरी सीरीज हैं, तो इससे आप फायदा उठाएं ताकि हमारा मिजाज दुरुस्त हो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की बच्ची और औरत का मिजाज थोड़ा सा ऊपर चला गया। अल्लाह ताला कहते हैं वो खुशी देने वाली हो, इताअत शुआर हो, मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में हो। कैसे? मर्दों के माल की हिफाजत करें, फजूल खर्चियां ना करती फिरें, उनके बच्चों की हिफाजत करें, उनकी चीजों की हिफाजत करें, उनके बूढ़े माँ बाप की हिफाजत करें। औरत के मिजाज में हमेशा देना है। आप आगे जाके पढ़ेंगे, चींटियों की बात होगी, शायद की मक्खियों की बात होगी, सब जगह जहां खैर है वो फीमेल्स में है। अल्लाह ने इस कायनात में औरतों को वो खूबियां बस दे दी जो कि मर्दों को भी नहीं दी। आप देखिए कि जैसे अल्लाह ताला की जात रब है ना, तो औरत को भी रबूबियत यानी तरबियत करती है। अल्लाह ताला लविंग है, अल वदूद है, औरत के मिजाज में मोहब्बत डाल दी। तो आज जो हमारा एक सेटअप बन चुका है ना, उसमें बाज़ दफा औरतें परेशान होती हैं। मैं माजरत के साथ कहूंगी कि आज का जो मौजूदा तर्ज़े तालीम है, ये औरतों को, लड़कियों को अकड़ देता है, उनके अंदर एग्रेशन आता है। हमें इज्जत नहीं दी, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है? औरतें ये मर्द है, औरतों को थोड़ी जगह दो, मर्दों को ज्यादा दो, बस हम नहीं करेंगे। होता क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में टूट जाती हैं, झुकती नहीं है। हालांकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज झुकी हुई होती है। फूलों की डाली क्यों खूबसूरत लगती है? झुकी हुई है। औरत के मिजाज में झुकाव होना चाहिए, ये है औरत का नरम होना, सुकून, माफ करने वाली, प्यार वाली, लविंग, केयरिंग, घर की हिफाजत करती है। आप देखिए ऐसी औरत कितनी मोहब्बत लेती है। एक दफा मर्द के गुस्से पे आप दब जाए, फिर देखिए बाद में वो कितना आपसे उसका रियलाइजेशन करेंगे। और अगर आप उनको एहसास दिलाने वाली, और आप कहते एक दिन तुम बर्तन दो, दूसरे दिन मैं दूंगी, क्योंकि इक्वेलिटी, इस आयत के ऊपर भी लोगों ने बड़ा जुल्म किया, इक्वेलिटी के नाम पे फिर औरतों को नारे लगवाए। अच्छा हमारी गवाही आदी है, अच्छा हमारी पे नमाजें भी आदी कर दो, और हमारे हकूक का में तो ये भी कम कर दो। हालांकि अल्लाह ने हर तरह से औरत को सिक्योर किया, लेकिन जिनको बिगड़ना होता है ना, वो बिगड़ते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम इस पे राजी हों। आप अगर अपने आप को एक सच्ची मुस्लिमा बना लेती हैं, फिर देखिए कि अल्लाह ताला आपकी कितनी हिफाजत करता है।